सुप्रभात न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में आप सभी को मेरा यानी फरहत नाज का नमस्कार। हर सुबह एक नया सवेरा होता है जो खुशियों से भरा हुआ और अपने सपनों को पूरा करने का एक और मौका देता है। तो आइए जिंदगी की इस खुली किताब को खुशियों से सजाएं और हर गम को भुलाते हुए नए सवेरे का आगाज करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी अनीता आनंद।
हेलो फरहत, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। And it's that time in the morning where we bring you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we share the latest in national, international news, metro city updates, and also we'll tell you what's happening in your city as well as some historical information related to this day, that is the 5th of July. So Farhad, let's begin with the headlines.
जी अनिता, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री की रूस यात्रा से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 8 और 9 तारीख को रूस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को जाएंगे। दोनों नेताओं का परस्पर हित के समसामयिक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा का कार्यक्रम है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 9 और 10 तारीख को ऑस्ट्रिया जाएंगे। पिछले 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मॉस्को वियना में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री ने ओलंपिक के लिए पेरिस जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे आश्वस्त हैं कि एथलीट अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करके भारत को गौरवान्वित करेंगे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की जीवन यात्रा और सफलता 140 करोड़ भारतीयों में आशा जगाती है।
The government will come up with a new shipbuilding and ship repair policy soon to make India top 10 countries in the sector by 2030 and top 5 by 2047. This was stated by Secretary in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, D.K. Ravichandran, yesterday. He said if tremendous demand stemming from the needs of the Indian shipping market are adequately targeted by Indian shipyards, it may result in an opportunity to the extent of over 20 lakh crore rupees by 2047. Mr. Ravichandran chaired a workshop on the issue yesterday, which was attended by more than 100 participants from 50 organizations, including various government ministries, departments, shipping operators and public sector, as well as private shipyards.
केंद्र ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत मानकों और नियामक व्यवस्था के विकास के लिए परीक्षण सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और संस्थागत समर्थन के वित्त पोषण के दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना को वित्त वर्ष 2025-26 तक कुल 200 करोड़ रुपए योजना खर्च के साथ शुरू किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली इस योजना का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए नई परीक्षण सुविधाओं के निर्माण और मौजूदा सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
A special session of Jharkhand Legislative Assembly has been convened on Monday to seek vote of confidence for Hemant Soren government. The decision to this effect was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Hemant Soren. Before taking oath, Chief Minister Hemant Soren had submitted a letter of support of 44 MLAs to Governor C.P. Radhakrishnan. Oath ceremony of ministers is likely to be held after winning vote of confidence in the assembly. New faces are likely to be included in the cabinet. 6 persons, including 4 men and 2 women, have been arrested in connection with the Hathras stampede that resulted in 121 deaths. While interacting with media, Inspector General ID of Police, Aligarh Range, Shalab Mathur said that the 6 arrested people are members of the organizing committee and worked as sevadars. ID Mathur added that 1 lakh rupee reward had been announced for information about the main accused, Prakash Madhukar. The 3-member Judicial Inquiry Commission formed on the instructions of Chief Minister Yogi Adityanath to investigate the Hathras stampede incident. The commission is headed by Justice Brijesh Kumar Srivastav, retired judge of the Allahabad High Court, and also includes IAS officer Hemant Rao and retired IPS officer Bhavesh Kumar as its members. The commission will soon go to Hathras for investigation and inquiry into the incident. The commission will prepare an investigation report on 5 points within 2 months, and the investigation report will be submitted to the government. After the meeting, Justice Srivastav while talking to the media, said that they will soon visit Hathras. Justice Srivastav also mentioned that they have a shortage of time, so they have to get to work at once.
वहीं असम में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो गई है. 29 जिलों में 21 लाख से अधिक लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं. राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बाढ़ प्रभावित मोरीगांव जिले का दौरा किया और लोगों से बातचीत की. राज्यपाल ने मौजूदा स्थिति का भी जायजा लिया और जिला प्रशासन को प्रभावित लोगों की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने भी स्थिति का जायजा लेने के लिए माजुली, धेमाजी और लखीमपुर का दौरा किया.
सीनियर इन्फॉर्मेशन Service IIS Officer Dhirendra Ojha has been appointed as Director General of Press Information Bureau PIB. Mr. Ojha will replace Chef Ali Sharan, who has been appointed as the Director General of the Publications Division. The Labour Party is projected to lead the UK under Keir Starmer with a landslide victory, while the Conservative Party was heading towards a devastating defeat, according to the exit poll by the three major TV networks. The exit poll gave the Labour 410 seats, a stunning gain of 209 seats in yesterday's elections for the House of Commons, ending its 14-year in a political wilderness. Only 326 seats are needed for a majority in the 650-member House. The exit poll predicted the Conservative Party of Prime Minister Rishi Sunak to win 131 seats, losing 241. The Liberal Democrats, a one-time ally of the Conservatives, came in next in the poll with 61, according to the exit poll.
और अनीता, मौसम विभाग ने 5 दिनों के लिए पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है. आज दक्षिण गुजरात में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है. इसी प्रकार की स्थिति आज जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में रहने की संभावना है. इस तरह का मौसम अगले 2 से 3 दिनों तक बना रहेगा. मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में भी बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है. और अनिता, एक बहुत ही अच्छी खबर है हमारे बालकों के लिए जो तीसरी और छठी क्लास में है. शैक्षिक वर्ष 2024-25 से कक्षा 3 और 6 के लिए नई और आकर्षक पाठ्य पुस्तकें लाई जाएंगी, ताकि जो बच्चों का जो रुझान है पढ़ाई की तरफ वो और बढ़ सके. शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का कार्य अंतिम चरण में है और कक्षा 3 और 6 की 9 पाठ्य पुस्तकें पहले से ही उपलब्ध हैं. शेष 8 पुस्तकें बहुत जल्द उपलब्ध होंगी. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नई दिल्ली में विद्यालय शिक्षा साक्षरता सचिव एनसीईआरटी के निदेशक और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों की तैयारी में हुई प्रगति की समीक्षा की. मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक और तनाव मुक्त बनाने के लिए सस्ती कीमत और उच्च गुणवत्ता की पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना है.
In Wimbledon, India's Yuki Bhambri, along with French companion Albano Olivetti, defeated Alexander Bublik and Alexander Shevchenko of Kazakhstan 6-4-6-4 in the first round of men's doubles in London last evening. India's Rohan Bopanna and his Australian companion Matthew Ebden also kicked off their campaign with a victory over an all-Dutch duo of Sander Arends and Robin Haas 7-5-6-4 in the first round of men's doubles in London. They will face the German pair of Henrik Jebrans and Konstantin Franzen in the next round. However, India's Suvin Nagal and his Serbian partner Dusan Lajovic suffered a straight set loss in the opening round of men's doubles.
और श्रोताओं, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और महानगरों का रुख कर लेते हैं. तो अनीता, क्या है आपके पास चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में?
Officials of the Bureau of Indian Standards Chennai conducted a raid at Hima Aqua Minerals, an authorized packaged drinking water bottling plant in Gumedipundi, acting on information of a suspected violation of BIS Act 2016. Officials seized a total stock of 8,640 PET bottles filled with water and labelled with spurious ISI marks. Approximately 10,000 labels with fake ISI marks were also confiscated. The plant was found selling water under the brands Hima and Super without a valid BIS license. G. Bhavani, head of Chennai branch office, stated that action would be initiated against the offender with penalties including imprisonment of up to 2 years or a fine ranging from 2 lakh to 10 times the value of goods. The city police have informed Madras High Court that 51,414 cases have been booked till May 31 for operating vehicles with defective number plates. The total penalty collected was more than 2 crores. At least 6,279 cases have been booked for the use of unauthorized Dark Sun film alone, and a fine amount of rupees 31,39,000 was imposed. Karnataka Health Minister Dinesh Gundurao held a video conference with the Zilla Panchayat CEOs and district health officials yesterday to review the preparations for dengue cases and Zika virus cases. He told officials to open fever clinics in places with high dengue positive cases. He also asked them to keep their eyes open for any Zika virus cases. The minister stressed that anyone with fever symptoms should be tested for dengue. He also emphasized on continuing the door-to-door dengue awareness activities for the next 2 weeks. In Bengaluru, municipal corporation areas have surveyed over 7.66 lakh homes and found 15,002 homes positive for dengue larvae. The health minister said that one suspected Zika virus case in Shivamogga is yet to be confirmed, awaiting test results. And Telangana Chief Minister Yedivanth Reddy, along with Deputy Chief Minister M. Bhatti Vikramarka, urged Prime Minister Narendra Modi to sanction 25 lakh houses for the poor. He presented representation on 12 issues and urged the centre to sanction them. During his one-hour-long meeting held yesterday, he requested the Prime Minister to exempt the Shravanpalli coal block from the auction list and its allocation, along with Koyagudam and Sattupalli Block 3 to Singarni Coal Collieries Limited, a PSU of the centre and the state, emphasising the need to boost IT infrastructure. Mr. Reddy sought the revival of IT investment region in Hyderabad to encourage the growth of IT companies and developers. Mr. Reddy further urged the centre to sanction 25 lakh houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana, stating that the allocation was low to the state earlier. Mr. Reddy requested the sanction of 25 lakh houses for Telangana in the upcoming phase of PMAY. He also said that the state is prepared to align its guidelines with those of PMAY. And now for Metro News from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Farhat.
जी अनीता, सबसे पहले शुरुआत कर लेते राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर से। दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ मिलकर छोटे बच्चों के लिए 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला में लगभग 175 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें कुछ बच्चे सुधार गृह से भी शामिल हुए थे। इस 10 दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में सभी बच्चों ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री भारद्वाज ने कहा कि 10 दिनों की इस कार्यशाला में इन छोटे बच्चों ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा कि आज के समय में यह बेहद जरूरी है कि हमारा समाज कला, संस्कृति और ड्रामा आदि से जुड़ा रहे। वहीं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में कल नागरिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अभियान के तहत मॉनसून के दौरान वेक्टरजनित बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया गया। एनडीएमसी के कर्मचारियों ने लोगों को वेक्टरजनित बीमारियों से बचने के लिए जागरूक किया। इस अभियान का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों की तैयारियों को बढ़ाना, ताकि बारिश के कारण होने वाली स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सके था। यह अभियान अगले महीने की 31 तारीख तक चलेगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर यात्रियों के लिए परिवहन सुविधा को और भी बेहतर बनाने के लिए जल्द ही फीडर बस, कैब, ऑटो रिक्शा के साथ रेंटल दुपहिया वाहन और साइकिल सेवाएं उपलब्ध होंगी। एनसीआरटीसी की तरफ से ये व्यवस्था दिल्ली से लेकर मेरठ तक के सभी 25 स्टेशनों के लिए की जाएंगी। यात्रियों को स्टेशनों पर रेंटल दुपहिया वाहन और रेंटल साइकिल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास जारी है। और अब मुंबई का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग ने विशेष सारांश संशोधन 2024 की घोषणा की है। इसके अंतर्गत आयोग विशाल आवासीय समितियों में मतदान केंद्र बनाने पर ध्यान दे रहा है। चुनाव आयोग मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के लिए सहकारी आवासीय समितियों के अध्यक्षों और सचिवों को मतदान केंद्र स्तर पर स्वयंसेवक नियुक्त करेगा। इन स्वयंसेवकों को समितियों में रहने वाले मतदान के पात्र लोगों के नाम मतदाता सूचियों में जोड़ने और वहां से कहीं और जा चुके लोगों या मृत मतदाताओं के नाम सूची से हटाने का काम सौंपा जाएगा। आवासीय समिति में मतदान केंद्र बनवाने के लिए समितियों को अपने नजदीकी बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करना होगा। इसके लिए समितियां निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर गूगल फॉर्म भरकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकती हैं। वहीं शेयर बाजारों में उछाल के बीच मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि नियामक प्राधिकरण के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस बढ़त के बीच सभी का संतुलन और घबराहट पर नियंत्रण बना रहे। मुंबई में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के नए कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में श्री चंद्रचूड़ ने आशा जताई कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सावधानी बरतते हुए सफलताओं का जश्न मनाएंगे। उन्होंने अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए ऐसी और अधिक अधिकरण पीठों का न केवल पक्ष लिया बल्कि लेनदेन की अधिक मात्रा और नए नियमों के कारण उच्च कार्यभार का प्रबंधन करने के लिए भी इन पीठों की वकालत की। और अब आगे बढ़ते हैं कोलकाता की ओर रुख कर लेते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि कोलकाता में रविन्द्र सरोवर जल तालाब के पास किसी भी क्रिकेट खेलने और कोचिंग की अनुमति नहीं है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हरिमणि भट्टाचार्य की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका मामले में राज्य सरकार को अपना हलफनामा पेश करने का आदेश दिया। पर्यावरण एनजीओ सबुज मंच ने कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी केएमडीए द्वारा रविन्द्र सरोवर के मैदान के पास एक निजी क्रिकेट कोचिंग एजेंसी को 98 कोटा जमीन पट्टे पर देने के आलोक में अदालत में अपील की थी। इसकी अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के समाचार। और अब रुख कर लेते हैं महानगरों के मौसम का। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। तो आज बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में भी बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता में भी बादल छाये रहेंगे और बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।
And talking about Chennai, it is expected to have rain or thunder showers that would occur towards evening or night. The minimum temperature was 23 degrees Celsius and the maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and the maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 25 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
और आइए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आज ही के दिन सन 1811 में वेनेजुएला के 7 प्रांतों ने स्पेन के शासन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी।
And in the year 1865, world's first speed limit law was created by Great Britain.
1922 में आज के दिन 5 जुलाई को नीदरलैंड में पहली बार आम चुनाव हुए।
And in the year 1947, Indian Act 1947 was presented in British Parliament, which was then accepted by the Emperor on 18th of July.
1959 में इंडोनेशिया में संविधान बहाल किया गया।
And in the year 1954, the first television news was broadcast by the BBC.
1962 की अगर बात करें तो आज के दिन अल्जीरिया 132 साल के फ्रांसीसी शासन से आजाद हुआ।
In the year 1975, after 500 years of Portuguese rule, Cape Verde Islands again independence. And in the 1994, Kiran Bedi, Delhi IG, wins a Magsaysay Award.
1968 में भारत की पहली पनडुब्बी सोवियत रूस से आज ही के दिन पहुंची थी।
In 1996, a female Finn daughter chief, Dolly, was born near Edinburgh. She became the first successfully cloned mammal.
1994 में आज ही के दिन जेफ बेजोस ने ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन की स्थापना की थी।
And in the year 2000, Rajita Mistry breaks P.T. Usha's long-standing record in 100 meters in the national circuit meet in Bangalore.
और आइए श्रोताओं, अब याद कर लेते हैं कुछ मशहूर हस्तियों को। सबसे पहले जिनका जन्मदिन है आज, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के जाने माने लेखकों में से एक, शरद पगारे की। उन्होंने अपना पूरा जीवन इतिहास की रूमानी कथाओं के नाम किया। डॉक्टर शरद पगारे इतिहास के विद्वान, शोधकर्ता और प्राध्यापक रहे। वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को वर्ष 2020 में के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिए जाने वाले व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें वर्ष 2010 में उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की के लिए दिया गया।
एंड टुडे इज द बर्थडे ऑफ रॉबर्ट फिट्ज़जेरल्ड डिग्स, बॉर्न ऑन दिस डे 1969, द बेटर नोन स्टेज। द स्टेज नेम इज रीज़ा, एन अमेरिकन रैपर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, आल्सो कंपोजर actor and filmmaker. He's the de facto leader of the hip-hop group Wu-Tang Clan, having produced most albums for the group and its respective members. He is a cousin of two other original Wu-Tang Clan members, Chizede and All Dirty Bastard. He also released solo albums under the alter ego Bobby Digital, along with executive producing credits for side projects. After forming the Wu-Tang Clan, Reza was founding member of the horrorcore group Graver Diggers since 1992, where he went by the name Reza Vector. Reza has been heavily involved in filmmaking since the late 90s, and he has scored a number of films, most notably Kill Bill Volume 1, released in 2003, Kill Bill Volume 2, released in 2004, and he has written and directed in film and television, starting with his directorial debut, The Man with the Iron Fist, in 2012. He's also acted in numerous films and TV series, including films American Gangster and Brick Mansions, and the TV series Gang Related and Californication. He's especially known for his music production with a style that includes the use of soul samples and sparse beats that has proved highly influential. Respect to all my Christian brothers out there. Together, we'll take it forever. All my sinners, brothers.
And the bone marrow, life always down. We said trapped inside the earth's shadow. The sky is dark eye, the sun, the pupil, yes. The wise recognize a fool is unscrupulous. A coward dies a thousand deaths. A liar lose a thousand breaths.
The magazine The Source placed him on its list of the 20 greatest producers in the magazine's 24-year history. Vibe listed him among the top 8 greatest hip-hop producers of all time. And NME placed him on their list of 50 greatest producers ever. We are listening to Fate of the World by Reza.
और श्रोताओं, आज जन्मदिन है ज्योति खरे का, जिनकी भारत के प्रतिष्ठित कवियों में गिनती की जाती है। वे विगत 30 वर्षों से हिंदी भाषा की साहित्यिक साधना में रत हैं और भारत की लगभग सभी साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं, आकाशवाणी, दूरदर्शन और सोशल मीडिया आदि संचार माध्यमों में समान रूप से सक्रिय हैं। ज्योति खरे की प्रतिष्ठा सोशल मीडिया आदि माध्यमों से देश के कोने कोने में फैले उनके हजारों प्रशंसकों के प्रेम दर्शनों और स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है।
Today is the birthday of the sports person Pursara Venkata Sindhu. PV Sindhu, the Indian badminton player, considered one of India's most successful sports persons. Sindhu has won medals at various tournaments such as the Olympics and the BWF circuit, including a gold at the 2019 World Championships. She is the first and the only Indian to become the badminton world champion and only the second individual athlete from India to win 2 consecutive medals at the Olympic Games. She rose to a career-high world ranking of number 2 in the April of 2017. Sindhu broke into top 20 of the BWF world rankings in September 2012 at the young age of 17. She has won a total of 5 medals at the BWF World Championships and is the only second woman after China's Zhang Ning ever to win 5 or more singles medals in the competition. Sindhu represented India in the 2016 Summer Olympics Rio, where she became the first Indian badminton player to reach the Olympic final. She won the silver medal after losing out to Spain's Carolina Marin. She made her second consecutive Olympic appearance in 2020 Summer Olympics Tokyo and won a bronze medal, becoming the first ever Indian woman to win 2 Olympic medals. Sindhu won her first Super Series title in the 2016 China Open, followed it up with 4 medals finals in 2017, winning the titles in South Korea and India. Sindhu made the Forbes list of highest paid female athletes in 2018, 19, 20, 21, 20, 22 and 20, 23. She's a recipient of the sports honors like Arjun Award and Rajiv Gandhi Khel Ratna, as well as India's 4th highest civilian award, the Padma Shri, the third highest civilian award, the Padma Bhushan.
और श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म हुआ था प्रसिद्ध भारतीय तैराक सचिन नाग का। नई दिल्ली में 1951 के पहले एशियाई खेलों में सचिन नाग ने जब तैराकी में 100 मीटर फ्रीस्टाइल का स्वर्ण पदक जीता तो खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके गले में स्वर्ण हार डाला था। एशियाई खेलों में किसी भारतीय तैराक को इसके बाद आज तक स्वर्ण पदक हासिल करने का गौरव हासिल नहीं हुआ। और अब हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता